تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 107 سے، بلکہ 107 سے لے کر 110 تک ایک ہی ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ چیزوں کو ہم ایک ساتھ دیکھیں گے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور اس کو کمین گاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اب تک اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آپ کو اس آیت کو سنتے ہی محسوس ہوا ہوگا کہ اس میں خاص واقعے کا تذکرہ ہے، تو آیت 107 سے 110 آیات جو ہیں ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بنو خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا، ابو عامر اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے یہ عیسائی بن چکا تھا، یعنی پہلے تو وہیں کا نیٹو تھا، مکہ والوں ہی کے ساتھ تھا، مدینہ والوں کے ساتھ، لیکن عیسائی بن گیا اور ترک دنیا کر کے راہب بن گیا، تو لہٰذا لوگ اس کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی پارسائی کی بڑی شہرت ہوئی، ظاہر ہے لوگوں کو ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جن کے بارے میں یہ معروف ہو جائے کہ یہ 3 سال سے سوئے نہیں، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تو اس قسم کی چیزیں کر کے لوگوں کی نظروں میں معروف ہوا اور لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے اسے کچھ فیض لینے کے لیے۔ یہاں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، جن کے بارے میں غزوہ احد کے ذمن میں ہم سن چکے کہ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر آئے تھے اور میدان جنگ میں آ کے شہید ہو گئے، اور جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو وہاں سے پانی کے قطروں کا نشان ملا، اور غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، یعنی باپ کے کرتوت کیا ہیں اور بیٹا کیا ہے۔ اس لیے کوئی نسب پہ فخر نہ کرے کہ میں کس کی اولاد ہوں یا میں کس کا بیٹا ہوں یا میرے ماں باپ میں کون ہے۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ جب یہ بہت مشہور ہوا، اتنے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ اب اس کو محسوس ہوا کہ لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹتی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی کے پروانے بنتے جا رہے ہیں لوگ، اور اس کی پیری فقیری کا چراغ جو تھا وہ بجھتا ہوا دکھا اس کو۔ اس سے یہ غصے میں آ گیا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ عبداللہ بن ابی کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کہیں دین کا کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ لوگ پہلے سے جو لوگوں کی نظروں میں جمے ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں دین کے نام پہ، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اب ہماری دکان جو ہے وہ بند ہوتی دکھتی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی کوئی ان کے مقابلے پہ تو آئے نہیں تھے، نہ آپ ان کے حریف بن کے آئے تھے، آپ نے وہی کام اس کے ساتھ بھی کیا جو دوسروں کے ساتھ کیا اور جو آپ کا بنیادی مقصد تھا، اور وہ تھی دعوت۔ آپ نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگا، کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ مراجعے کے کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کس مسلک کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کس فقہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں، کوئی مسلک نہیں، کچھ نہیں، دین ابراہیمی کی بات کی۔ کہنے لگا، آپ نے تو اس میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں۔ نعوذ باللہ، الزام لگا کہ آپ تو وہ نہیں ہیں اور آپ تو کچھ اور بن چکے۔ اللہ کے نبی نے ممکن حد تک اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ ضد پر اڑا رہا۔ یاد رکھیے، ہر پوچھنے والا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کس گروہ سے ہیں، کس جماعت سے ہیں، وہ یہ سوچ لے کے نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ آپ کی بات سن کے مان جائے۔ مان جاتے ہیں لوگ الحمدللہ، لیکن جہاں ضد ہوتی ہے وہاں اڑ جاتے ہیں لوگ۔ یہ بھی اڑ گیا۔ جوش میں آ کر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگا، ہم میں سے جو جھوٹا ہو خدا اسے اپنے وطن سے دور غربت اور تنہائی میں ہلاک کرے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی اس نے کہ آپ جھوٹے ہیں تو پھر کسی پردیس میں ہی آپ مر جائیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات پہ کہہ دیا آمین، آمین بھی کہہ دیا۔ غزوہ بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین حاصل ہوئی تو یہ بیتاب ہو گیا، مکہ میں آیا، اہل مکہ کو انتقام لینے کے لیے خوب اکسایا، اور جب ان کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ ان کے ساتھ تھا۔ میدان احد میں پہنچا تو اس خیال سے کہ جب وہ اپنے پرانے عقیدت مندوں کے سامنے ہوگا تو وہ اس کی طرف دوڑ کر آئیں گے، یعنی کچھ فہمی تھی کہ میرے تو بہت پرانے چاہنے والے لوگ ہیں۔ وہ صفوں سے آگے بڑھ کر انصار کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور انہیں اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی، یعنی کبھی تھریٹ کیا، کبھی رغبتیں دلائیں کہ ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ واپس۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ دیکھ چکے تھے اور آپ کے چہرے پہ ان کو جو سچائی اور معصومیت دکھی تھی، اس کے بعد کون اس کی باتوں پہ آتا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو راہب کہنے کی بجائے فاسق کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ ابو عامر فاسق کے نام سے معروف ہو گیا، ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اب اس کو کیا چاہیے تھا اس وقت پہ کہ لوگوں کو اللہ کے نبی کے خلاف کرتا یا اللہ کے نبی کے کا دشمن بن جاتا کہ آپ کی وجہ سے میری دکانداری ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کو دکانداری کو دینداری میں بدل لینا چاہیے تھا، خود بھی اسی راستے پہ آ جاتا جو سچ کا راستہ تھا، لیکن جھلا کے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو قوم تیرے ساتھ جنگ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا، دھمکی دے دی، اب ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہارے راستے میں روڑے اٹکاؤں، جو لڑنے آئے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ بس اس کی یہ دھمکی تھی، غزوہ حنین تک کفر اور اسلام کی جتنی جنگیں ہوئیں یہ کفر کے ساتھ رہا، ان کا لیڈر بن کے رہا، سرغنہ بنا، کبھی ڈھکے چھپے کبھی ظاہر ہو کر اس نے کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دی، حتیٰ کہ خوازن اور سکیف کے جو مشہور تیر انداز تھے وہ بھی شکست کھا گئے غزوہ حنین میں۔ اب اس کو یقین آ گیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی ایسی قوت نہیں جو اسلام سے ٹکر لے، اب اس نے سوچا کہ یہاں تو میری دال نہیں گلتی، چلو حکومت کو ساتھ ملاتے ہیں، اب اللہ کے نبی کے خلاف کچھ سازشیں کھڑی کرتے ہیں، ان کو ذرا بدنام کرتے ہیں، کوئی ان کو لیگل ایشوز میں اٹکاتے ہیں کہ شاید ان کا کام ختم ہو جائے۔ اس نے کیا کیا کہ قیصر روم کے ساتھ دوستی کی، پہلے سے بھی تعلقات تھے اور ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے دل میں فسق ہو، زبان پہ رہبانیت ہو، ان کی بڑے بڑوں سے دوستیاں ہوتی ہیں۔ اس خیال سے ملک شام کی طرف گیا کہ قیصر روم کو مسلمانوں کے خلاف اکسائے اور اسے ساتھ لے کر مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کرے اور مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، اب ایسی باتیں کہہ کے اس نے منافقین کے حوصلے بھی بلند کر دیے، منافق انتظار میں تھے کہ کسی وقت بھی اب ہمیں اشارہ ہوگا تو ہم چلیں گے، اور دیکھیے رہتے اللہ کے نبی کی صفوں کے بیچ میں تھا لیکن ہمدردیاں ابھی فسق اور کفر کے ساتھ تھیں۔ خیر اپنی ارادوں میں کامیاب ہو گیا، روم کا بادشاہ قیصر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گیا، اور جس کی وجہ سے تبوک کا سفر پیش آیا۔ یہاں آپ کا پتہ چل رہا ہوگا جو شروع صورت سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قیصر روم تیاریوں میں تھا، کوشش کر رہا تھا، وہ کیسے کر سکتا تھا اتنی دور بیٹھا ہوا جب تک اندر کے کچھ لوگوں کو ساتھ نہ ملائے۔ تاریخ میں جہاں بھی لوگوں نے اسلام کو نقصان دیا، غیروں نے باتیں بنائی ہوں گی، کوششیں کی ہوں گی، لیکن ان کی کوششوں کو کامیاب کرنے میں اپنے ہی لوگ کامیاب ہاتھ بنتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں، خانہ جنگی ہوتی ہے، ایسے لوگ اندر کے گھر کے بھیتی لنکا ڈھوئے والی کیفیت ہوتی ہے، اور نقشے انہوں نے بنائے تھے اسلام کے خلاف لیکن رنگ جو تھے ایسے منافقوں نے بھرے، جو اپنی صفوں میں رہتے ہوئے جس تھالی میں کھائیں اسی میں ٹھوکر لگانے والی کیفیت کے ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ ساری موومنٹ چل رہی تھی، تصور میں تو آ رہا ہے نا اب آپ کو، اب یہ ملک شام کے بادشاہ روم کی قوتوں کو ساتھ ملا رہا ہے مسلمانوں پہ حملے کے لیے، کچھ لوگ مدینہ میں رہنے والے جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزر گیا وہ اس کے اعلی کار بنے۔ اب یہ باتیں ساری ہوا میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی میٹنگ روم چاہیے ہوتا ہے، کوئی کانفرنسز ہوں گی، کوئی وہاں آن لائن میٹنگس ہوں گی، کوئی آن سائٹ میٹنگس ہوں گی۔ اب بنیادی طور پہ ان کو چاہیے تھا ایک سینٹر، ایک بلڈنگ چاہیے تھی، ایک لوکال چاہیے تھا آپ کی زبان میں، جہاں بیٹھ کر یہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں اور کفر کو یہاں لانے میں مدد کریں۔ अगर आप में से कुछ लोगों ने बरेसगीर पाको हिंद की हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप इसको टैली कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों को बरेसगीर पाको हिंद में बुलाने के अंदर कौन थे लोग। किसी वजह से ही आए थे, खुद तो नहीं उठ के आ जाते। तिजारती मंडियां कायम हुई और उसके बाद वो आपके घुटनों में ही बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ। अब हुआ क्या कि ये चाहते थे कि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा सेंटर मुसलमानों के एरिए के अंदर बन जाए कि जहाँ दिन रात हम बैठें काम करें, यहाँ प्लानिंग्स हों, यहाँ से हुक्म जारी हों और हम मुसलमानों के अंदर साजिशें कायम करें अल्लाह के नबी सल्लम और इस्लाम की इस कौज के खिलाफ। अब इसके लिए करते क्या, लिख देते मुसलमानों के खिलाफ इदारा, हाँ एंटी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन उसका नाम रखते तो आता कौन, एक एक करते और उनको निकलवा के फेंक देते। आखिर नबी सल्लम कोई ऐसे गाफिल लीडर नहीं थे और मुसलमान मुल्क था उस वक़्त, वो ये भी याद रखिए। को मदीना ऐसा नहीं था कि दारुल कुफर था और किसी हुकूमत ने कह दिया कि जो मर्जी करो, तो ये भी करते रहें। अब करें तो क्या करें, लिहाजा उसका तरीका इन्होंने क्या सोचा कि बनाते तो हैं अंदर एक इदारा जिसकी सारी हमदर्दियाँ कुफर से, मुसलमानों को तोड़ना है, सहाबे कराम के दिलों में नबी सल्लम के खिलाफ नफरत डालनी है, फूट डालनी है। नाम लिख देते हैं बाहर मस्जिद का, क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान मुल्क में कोई जगह जिसको हम दूसरों की नज़रों से छुपाना चाहें या लोग हमारी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र ना रखें, वो ज़ाहिर इस्लाम के नाम पे करेंगे ना। देखिए एक मुसलमान मुल्क में हज़ारों मस्जिदें होंगी, कोई केयर ही नहीं करता, और अगर वहाँ एक कोई ऐसे इंग्लिश नाम के साथ या किसी एंटी इस्लाम नाम के साथ बिल्डिंग बन जाए तो हर एक की नज़रें उठेंगी ना कि इस बिल्डिंग में क्या है। बस इस काम के लिए इन्होंने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा के करीब ही एक बिल्डिंग ली और नाम दिया उसको मस्जिद का। अब इराद मसला एक और खड़ा हो गया, ये सारी प्लानिंग तो हो गई है लेकिन अब शुरू कैसे करें, इफ्तिताह कैसे करें, अपनी इस मस्जिद को लीगलाइज कैसे कराएं। आप कह सकते हैं आज की ज़ुबान में कि इस मस्जिद को रजिस्टर कैसे कराएं। अब इस अक्लमंद बहुत होते हैं ऐसे लोग, इन्होंने सोचा अगर ख़ुद से ये काम शुरू कर देंगे तो अल्लाह के नबी की नज़रों में आएंगे, वो पूछेंगे भाई ये कहाँ से बन गई मस्जिद, हमारा मुल्क और हमें पता ही नहीं। चुनाचे ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा कि अल्लाह के नबी आपको पता है अपनी बातें जो भी लोग दीन के नाम पे बड़ाइयाँ कर सकते हैं, कुछ इस किस्म किसने बातें की होंगी। कहने लगा देखें दिल में बड़ी मोहब्बत है इस्लाम की, मस्जिदों की। अब मसला क्या है कि जो मस्जिद कुबा आपने बनाई हुई है ये बड़ी छोटी है, पहली बात है शहर से थोड़ी दूर है, बूढ़े गरीब लोग या जो हैंडीकैप्ड हैं वो आ नहीं सकते, बीमार होते हैं कभी, रात के अंधेरों में वहाँ उनका जाना मुमकिन नहीं होता। तो हमने ऐसा किया है कि एक और मस्जिद वहाँ बना ली है, बस आप ऐसा करें कि वहाँ आके दो नफिल पढ़ के बरकत की दुआ कर जाएं तो मस्जिद की ओपनिंग हो जाए। अब आप सोचें इसने ये बात कब आके कही, जब अल्लाह के नबी तबूक की तैयारियों में थे। आपने कोई उसके बारे में गलत नहीं सोचा, आपने कहा कि देखो इस वक्त तो बहुत सारे और काम हैं, हम वापस आके वहाँ पढ़ लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या। और अल्लाह के नबी ये कह के चले गए कि हम वहाँ से वापस आकर यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेंगे और जो भी बात होगी। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी तो चले गए, अब ये इस उम्मीद में थे कि तबूक से बच के आना किसने है बाकी, लेकिन वो बात करके अपनी ज़रा अपने आप को लीगल करने की बात कर ली। लेकिन जब नबी सल्लम ग़ज़वे तबूक से वापस आ रहे थे, अभी मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हुए, कि ये अगली सारी आयतें जो आयत नंबर 107 से 111 तक हैं ये अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई, 110 तक, आयत नंबर 107 से 110 तक नाजिल हो गई और अल्लाह के नबी को बता दिया गया कि आपने इस मस्जिद में नहीं जाना, ये मस्जिद नहीं है, इसके इरादे अज़म क्या हैं वो भी आयत के साथ हम पढ़ेंगे, लिहाजा आप इस मस्जिद को गिरा दें। जब ये आयतें नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लम वापस आए, आपने दो सहाबा को बुलाया, आमिर बिन सकन एक का नाम था और दूसरे वहशी जो हज़रत हमजा के कातिल थे, इनको बुलाया कि जाओ इस मस्जिद को ढा दो, उस मस्जिद में आग लगा दो। ये गए, इन्होंने इस मस्जिद इमारत को गिराकर ज़मीन के बराबर कर दिया और मस्जिद ज़रार जो थी खाली कर दी। अब ये जब ख़त्म हुई, वो काफ़ी मसला हुआ जो आगे आयत में हम देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये जगह नबी सल्लम जब कुबा से मदीना मुनव्वरा गए तो ये बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो एक सहाबी थे आसिम बिन अदी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी अगर आप इजाज़त दें तो इस जगह मैं अपना घर बना लूँ, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप बना ले। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, कुरान में तो इस जगह के बारे में आया कि ये ज़रार वाली, और मतलब इसके बारे में कुछ इस किस्म की आयतें आई हैं कि जो पसंदीदा नहीं है। तो आपने कहा कि ठीक है, जिसको ज़रूरत है वो बना ले, जो रहना चाहे रहे। तो बहरहाल तारीख में आता है कि साबित बिन अकरम जो थे उनको वहाँ रहने की इजाज़त दी गई, लेकिन जब तक वो वहाँ रहे ना तो उनका कोई बच्चा, यानी जो बच्चा पैदा होता वो फौत हो जाता, और हत्ता के आज तक कहते हैं कि वो जगह वीरान पड़ी है। किसी मुर्गी ने भी वहाँ बच्चे नहीं दिए, कोई कबूतर और जानवर तक उसमें फला फूला नहीं, और ये जगह हर एक के लिए इस बात की निशानी बन के पड़ी है कि चाहे नाम मस्जिद का हो, लेकिन इरादे अगर गलत हों, खतरनाक हों, तो वो मस्जिद मस्जिद नहीं रहती, वो मस्जिद दरार बन जाती है। आइए बातों को देखते हैं इन सारी बातों की रोशनी में। वल्लज़ी नत्तखज़ू मस्जिदन दिरारम, और वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिद ज़रर देने को। ज़िरार, अब देखिए कि अलिफ आ गया इसमें भी, तो एक दूसरे को नुकसान देना, बाब मुफाला। मस्जिद आ गई दूसरे मुसलमानों को ज़रर देने के लिए, दुआत रौरा इसका रूट है। ज़रर और ज़रार दोनों में फ़र्क क्या है कि ज़रार में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़रर क्या होता है, जिसमें करने वाले का तो फ़ायदा हो मगर दूसरे का नुकसान हो। और दरार का जो लफ्ज़ यहाँ आया है, इसमें करने वाला भी फ़ायदा नहीं उठा सकता और दूसरों का भी नुकसान होता है। और यहाँ आप देखिए कि एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई कि बास दफ़ा पार्टी बाजी में, सट्टेबाजी में, दूसरों के साथ दुश्मनी में इंसान इस हद तक आगे गिर जाता है, इस हद तक बढ़ जाता है कि वो खुद को भी नुकसान दे रहा होता है। उसको पता था कि मेरे साथ ये कुछ होगा, ये तो अब उसके वक्ती ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे काम करने वालों को खूब अच्छी तरह पता होता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलने वाला। कहा मस्जिदन दिरारन, ज़रर देने के लिए थी, ज़रर क्या था वो हम देख चुके। दूसरी वजह क्या थी इस जगह के बनाने की, वह कुफरन, कुफर के लिए बनी ना, हाँ, लोगों को इस्लाम से दूर करके कुफर की तरफ लाने के लिए बनी। वह तफरीकम बैनल मोमिनीन, मोमिनों में तफरकेबाजी के लिए बनी। अल्लाह अकबर। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती। आगे हम पढ़ रहे हैं इन आयतों में, मस्जिद तकवा, उस सिसालत तकवा, तकवा की बुनियाद पे जो मस्जिदें बनती हैं वो, और मुसलमानों को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, इख्तलाफ डालने के लिए जो मस्जिदें बनती हैं वो मस्जिदें ज़रार बन जाती हैं। ये साजिशों के लिए थी, कुफर के लिए थी, क्योंकि अंदर भी कुफर था और कुफर की खिदमत करने के लिए बनाई गई। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मस्जिदें तो ईमान बढ़ाने की जगह हैं, मस्जिदों में तो लोगों को ईमान मिलना चाहिए, और जिन मस्जिदों में ईमान मिलने की बजाय वहाँ से कुफर और कुफर की सरगर्मियाँ आम हो, चारों तरफ कुफर आम हो, लोग काफिराना तरीक़ों पे जिएं, मरें, खाएं, पिएं, शादियां ब्याह करें, तो फिर वो मस्जिद मस्जिद नहीं रहती, वो कुफर को प्रमोट करने वाली होती है। और साथ ही फरमा दिया, व तफरीकम बैनल मोमिनीन व इरसादल लिमन खारब अल्लाह व रसूलहू मिन कब्ल, और ये तो घात लगाने की जगह थी उस शख्स के लिए जो अल्लाह से और उसके रसूल से पहले ही लड़ चुका था। यहाँ लिमन, मन की ज़मीर है अबू आमिर फासिक की तरफ, और इरसाद रॉ स्वाद दाल, उर्दू में भी हम बोलते हैं रसद गाहें, कमीन गाह जहाँ फौजियों का सामान रखा जाता है, मरसद पीछे हम पढ़ चुके लफ्ज़, यानी गज़वे हुनैन की तरफ इशारा है कि गज़वे हुनैन तक जो शख्स पहले ही अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन बना रहा, आज उसको मस्जिद बनाने की जरूरत मिल गई। इसीलिए आप देखिए कि जब ऐसी कोई मस्जिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में बनती कि जब कोई दूसरी मस्जिद उसके बिल्कुल करीब होती तो आप उस मस्जिद को बनाने की इजाज़त ना देते। अफसोस की बात यह है कि जब दीन का मामला आता है तो हमारे सारे रूल्स ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया का होता है तो नहीं ख़त्म होते। किसी जगह की बात मैंने सुनी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कोई भी शॉपिंग सेंटर, अमेरिका में ऐसा होता है कि जैसे शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, स्ट्रिप मॉल्स टाइप भी होते हैं, जैसे सात सात दुकानें बनी, अब ये एक पूरा स्ट्रिप मॉल है, फिर छः सात गलियां छोड़ के फिर इस तरह का होगा। किसी स्ट्रिप मॉल में अगर पहले से एक ग्रोसरी स्टोर हो तो ओनर जो होता है, जो लैंडलॉर्ड है, वो इजाज़त नहीं दे सकता किसी दूसरे बंदे को उधर ग्रोसरी स्टोर खोलने की। अगर पहले वहाँ शराब की दुकान है तो दूसरी नहीं खोल सकती, यानी ये उनका असूल है एक का बिजनेस खराब करके दूसरे को नहीं खोलने देंगे। इसीलिए फिर वो जो कंपटीशंस होते हैं जिन चेन्स के, जैसे फिएस्टा है, एचईबी है, या कोई इनके फूड चेन्स होती हैं, तो फिर वो कोशिश कर रहे होते हैं कि पहले हम हर जगह अपना अपना स्पॉट बना लें, क्योंकि अगर एक की बन गई तो दूसरे की नहीं होगी। हाँ, फिर इसमें नहीं मिला तो वो सड़क के दूसरी तरफ दूसरे में बना लेते हैं। इसी तरह आप देखें कि कंपनीज होती हैं, जैसे जहाँ पेट्रोल पंप्स होते हैं मोस्टली, तो एक पेट्रोल पंप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको बाकी सारों भी दिखेंगे, गो के उस जगह नहीं बन सकते। तो बस दफा दुनिया की चीजों में कुछ जगह पाबंदियां लगती हैं, इसके बावजूद लोग मुकाबलेबाजी के लिए, जहां शेल का आपको गैस स्टेशन दिखेगा तो साथ ही उसके आपको दूसरी कंपनी का भी दिखेगा। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मस्जिदों के मामले में या दीन के इदारों के मामले में भी जब लोगों की ये सोच हो जाए तो फिर वो मस्जिद मस्जिद नहीं रहती, वो मस्जिद दरार बन जाती है। और शायद ये बात यहाँ आने से पहले तो मुझे इतनी समझ ही ना आई होती। पाकिस्तान में रहते हुए भी मैंने मस्जिदें देखी, लेकिन मैंने इस तरह नहीं देखी कि जितनी यहाँ हमारे इस शहर में दिखती हैं। अब हम ना किसी को मस्जिद ज़रार कह रहे हैं, ना हम किसी को मस्जिद तकवा कह रहे हैं, ना हमारा किसी पे कोई बात है। लेकिन याद रखिए एक बात ज़िंदगी में, कि जब कभी कहीं कोई एक काम हो रहा है तो फिर दूसरा बंदा अगर वहाँ इस सोच के साथ जाता है कि मैंने इसके लोगों को काट के इधर लगाना है, हमारी तो ये तारीख ही बनती जा रही है। अब एक ग्रोसरी स्टोर बनता है, उसमें से टूट के दो और बन जाते हैं, एक मस्जिद टूटती है तो दो मस्जिदें उसके अंदर से और निकल आती हैं। अल्लाह कहते हैं तफरीकम बैनल मोमिनीन, ये मोमिनों के बीच में तफरके वाली बातें हैं, इससे कोई बात नहीं बनेगी, इससे कोई खैर नहीं होगी। दीन फैलाने की चीज़ है, कोई जमा करके एक एरिया में जमा करने की जरूरत नहीं होती कि आप एक इलाके के तो लोगों को मुसलमान कर दें, वहां इतनी मस्जिदें बना लें, और एक ऐसा इलाका हो कि जहाँ कोई जगह ही ना बने। और यकीन करें कि इस चीज़ पे अगर आप गौर करें तो आपको इस्लाम का मैसेज भी समझ आ जाता है कि ये ज़रूरत के तहत काम करवाता है। अगर कहीं कोई काम कर रहा है, मिसाल देती हूँ कि हम लोग इस वक्त ये एक तालीमी इदारा बना के बैठे हैं, अब ये हमारे यहाँ आने के, मेरा ख्याल है कि मुझे तो नहीं लगता, आपको तो और भी पता होंगे और आप ही लोगों ने बताया कि ऐसा अभी कोई तालीमी इदारा आपने यहाँ नहीं देखा। सच है ना? ये अल्लाह ने आपको साबिकून अल अव्वलून में डालना था, और अल्लाह इसकी तौफीक देता रहे बगैर किसी तकब्बुर और बड़ाई के, और ही आजी दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है, रहमत है कि आपको अल्लाह ने पहला कर दिया। लेकिन आप देखिए कि क्या इस इलाके में मस्जिद मौजूद है कोई? मैंने एक दिन बैठ के ऐसे ही गिना, ऐसे जैसे यहाँ बैठी हूँ, आप चले जाते हैं, कभी कुछ काम करती रहती हूँ, तो किसी मौके पर मैंने गिनी कि मैं जो सिर्फ आए हुए शायद चंद महीने ही हुए हैं मुझे यहाँ, मैंने 16 मस्जिदें गिनी जो मुझे पता लग गए हैं सिर्फ इस इलाके के वॉकिंग पे। यकीन करें 16 मस्जिदें सिर्फ ये आपके स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, जहाँ मैं लेके जा सकती हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। अब आप सोच सकते हैं क्या इस शहर में कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जहाँ कोई मस्जिद नहीं लेकिन मुस्लिम है। और उस दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इस वक्त तो एक कानून बन जाना चाहिए, खासतौर पर मुसलमानों को, कि हम एक चीज़ के ऊपर तो इतना जोर देते हैं और दूसरी जगह चीज़ हमारे पास नहीं है। अभी तक यहाँ देखे मुस्लिम बच्चों का पूरा स्कूल कोई नहीं, आप जैसी ख़वातीन के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं, हाँ मुस्लिम बैंक कोई नहीं, और इस तरह की कई फील्ड है ना। आप देखिए कि ये क्या सोच है कि हर गांव की मस्जिद होनी चाहिए, ये हमारे कबीले की मस्जिद है, ये हमारे इलाके की मस्जिद है, ये हमारे ये क्या है? अगर सिर्फ दर्द रखे ना दिल में, शुक्र अल्लाह का कि हमारी अभी को मस्जिद नहीं बनी, कल बन गई तो कोई उसको ना कह दे मस्जिद तक हुआ। लेकिन अब सोचें कि ज़रूरत के तहत काम करना चाहिए सिर्फ मुकाबलेबाजी के तौर पे, और तफरका। और आप देखिए कि ये शख्स अबू आमिर क्या था, नाम कितना प्यारा है इसका, इसके इसकी औलाद कितने प्यारे काम कर रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा सिर्फ लोग कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो तो कितना संगीन हुक्म है। अब आप यहाँ इस बैकग्राउंड को तो सुन चुके, अगला हिस्सा आयत का देखते हैं। वला यहलिफुन इन अरदना इल्लल हुस्ना, और वो कस्में खाएंगे कि हमने तो भलाई ही चाही थी। यानी कोई मस्जिद बनाने वाला, कोई ऐसा काम करने वाला, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मेरी नीयत इन चार कामों में से एक है। कस्में खा खा कर कहेंगे कि हम तो भलाई करना चाहते हैं, यानी हम तो मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, लोग आएँ नेकियाँ करें, दिस एंड दैट। हालांकि वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि ये लोग झूठे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मस्जिद जिसका मकसद अल्लाह ताला से मुलाकात, दिल में ईमान का बीज डालना है, अगर वो मस्जिदें एक दूसरे की लड़ाई की बात बन जाएं, लोग मस्जिदों में जाकर भी एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें करें कि जो लोगों को इस्लाम से दूर करने वाली बन जाए, तो फिर ऐसी चीज़ अल्लाह ताला की नज़रों में वो मस्जिद नहीं हो सकती। इससे अमल की बात जो अभी तक बात हुई, ये पता चली है नंबर एक कि किसी के मुकाबले पर दीन का काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी नॉन मुस्लिम को दीन का पैगाम इसलिए देना है कि हक फैले और बातिल खुद ही चला जाएगा। फिर अगली बात, अपने काम में इखलास पैदा करें, खुद बहुत बरकत आ जाएगी। हमारे यहाँ अमूमन प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़ोर देते हैं, जितनी खूबसूरत बिल्डिंग होगी उतने लोग ज़्यादा आएंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा, हालांकि ये सच नहीं। यकीन करें कि आप आधी ज़ुबान से सच बोलें लेकिन सच में इतना असर होता है कि लोगों के दिल पकड़े जाते हैं। सिर्फ एक मस्जिद मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है अगर उस मस्जिद में किसी एक ख़ास फिक को प्रमोट करना, किसी एक इदारे को, किसी नाम को प्रमोट करना ना हो। अगर हम सब की नीयत ये है ना कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, तो हम जितने लोग यहाँ इस्लाम के नाम पर जमें, एक एक फोरम हर जगह कायम हो सकता है। सारी मस्जिदें एक फोरम में चली जाएं, सारे तालीमी इदारे एक फोरम में चले जाएं, सारे ग्रोसरी स्टोर्स एक ब्रांच के अंदर चले जाएं, वो मुसलमानों की आपस की खराबियाँ पैदा ही नहीं होंगी जो बाद में होती हैं। आज क्यों छोटी छोटी बातों पर दुनियावी काम करने वालों में भी झगड़े हैं और दीन के भी? क्यों हर एक सोचता है कि मेरे तकाबुल पे ये कारोबार खोल रहा है, ये इसने मेरे कस्टमर्स ले लिए? वजह क्या है कि आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। हम ये सोच लेना कि हर नाम की एक मस्जिद होनी चाहिए, तो फिर तो आप देखें हर नाम का एक ग्रोसरी स्टोर भी होगा। मेरा नाम क्या है, मैं किस जमात को प्रमोट करती हूँ, मैं किस मसलक को करती हूँ? नहीं, अगर यहाँ मुसलमानों की ज़रूरत पूरी हो रही है तो मुझे उसी का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा हाल यह कि हम नए आने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो पहले से लोग मौजूद होते हैं हम उनको देखना नहीं चाहते। हर बंदा जब मैं लेकर आएगा ना, मैं, मेरा नाम, मेरी ज़ात, मेरा काम, मेरा इदारा, मेरी सोच, मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो फिर वो काम तो फैल जाएगा लेकिन लोगों को वो खैर नहीं मिलेगी जो मस्जिदों से मिलनी है। आज इतनी मस्जिदें हैं दुनिया में, इसके बावजूद नेकियां आम क्यों नहीं है? वजह क्या है कि असल हमदर्दियाँ इस्लाम को फैलाने से ज़्यादा अपनी ज़ात को फैलाने वाली है। आज इस्लाम के नाम पे हम लड़ते हैं और दीन का बड़े से बड़ा काम अगर आपस के अंदर नफ़रत पैदा करने का ज़रिया बने, तफरकेबाजी पैदा करे, तो वो खैर की बजाय नुकसान बन जाता है। और इसी से आप देखिए कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि कुफर इस्लाम को जहाँ भी कमज़ोर करता है इसी रास्ते से करता है। कल भी यही रास्ता था, आज भी है। आज आपके मज़हब के खानों में वो आप पूछने लग गए हैं कि आप मसलक किससे ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे साथ खुद हुआ एक जगह कहीं, पता नहीं अब याद नहीं क्या मौका था, तो जब उसको मैंने कहा कि आई एम मुस्लिम, कहती व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, कुछ इस तरह वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी। तो मैं हैरान होगी कि इसको भी ये बात पता है, उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। किसी को क्या लगे, जिनको अपने दीन का नहीं पता, जो अपने माँ बाप को नहीं पूछे, जो अपने बच्चों के हाल ना पूछे, उनको क्या लगे हम आने वाले किस मसलक से हैं? कभी सोचा करें, आज मुसलमानों में जो तफरकाबाजी का जहर उगला गया ना, इसके भी हाथ पीछे से निकलते हैं। उनको पता है, तारीख गवाह है, जब काफिरों ने मुसलमानों पे कब्जा किया ना तारीख में, तफरकेबाजी के रास्ते से किया। तोड़ो, ये सिंपल सी मिसाल है, लकड़ियों का एक गट्ठल है, 10 लोग आएंगे उसको तोड़ना चाहेंगे, नहीं तोड़ेंगे, टूट ही नहीं सकता। इस्लाम, मुसलमान नहीं टूटते, वो पहले उस गट्ठे को तोड़ते हैं। लकड़ी 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 कर दो, फिर चंद लोग इधर से आएंगे, एक लकड़ियाँ तोड़ जाएंगे, दूसरी तोड़ देंगे। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर इस्लाम इतना जोर देता है। सूरह आले इमरान में हमने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये कई मौके पे ऐसा हुआ। तो आज के दौर का पैगाम यही है, मस्जिदें बनवाने वालों से, मदरसे बनवाने वालों से और दीन के नाम पे हमारी तरह ये इदारे बनाने वालों से कि खुदा के लिए इस्लाम को बुनियाद बनाओ, किसी के तकाबुल पे काम ना करो। कोई एक काम शुरू करता है, दूसरा कहता है मैं भी अब यही करने लगा हूँ। पहले करना आता है कि नहीं आता है, हु केयर, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर लें, हम भी कर रहे हैं, अब ये भी होगा। मुझे कोई कभी कहते हैं ना फ़लाँ ने भी ये काम शुरू कर दिया, मैं कहती शुक्र करें वो भी हमारा ही सदका जारी है। आपके तकाबुल पे अगर कोई कहीं कोई काम करता है, वो दर पर्दा आपका ही तो सदका जारी है, करें सही काम। लेकिन करना आना और करना बिल्कुल फ़र्क होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ऐसी बातों को सामने रखा, अगर आप मुकाम का नाम नोट करना चाहें कि आयतें ज़ी अवान जगह है, वहाँ पे नाजिल हुई थी, मदीना से दाखिल होने से पहले का ये मुकाम है। अब अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि क्यों इतना सख्त हुक्म दिया गया कि आप इस मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि ला तकुम फी ही अबदा, आप हरगिस ना खड़े हों इसमें कभी भी, ये नहीं कि अब नहीं, कभी भी ना खड़े हों। इसीलिए आप देखिए कि उलमाए कराम और मुफस्सरीन इस चीज़ को इस आयत से दलील लेते हुए कहते हैं कि ऐसी तमाम मसाजिद जहाँ से मुसलमानों के साथ ये सारी बातों का डर हो जिसका तस्करा पिछली आयत में है, तो उसके लिए कोई फ़ंड देना, वहाँ के लिए कोई वॉलंटियर करना, वहाँ जाके कोई अपनी जिस्मानी या जहनी स्किल्स लगाना, इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे ना कि ना जाएं उधर या इसको गिरा दें। ये लफ्ज़ ला तकुम बड़ा अहम है, आबाद भी नहीं करने जाना चाहिए, इनकी रौनक मत बढ़ाओ। आप कहते हैं हम देखने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कभी चले जाओ, वो खुद ही नहीं आपको पसंद करेंगे, वो फिर आपके जाने से परेशान नहीं होंगे, तो कभी रौनक नहीं। आप कहते हैं खाने ही तो खाने जा रहे हैं, चलो दुआ में तो शामिल हो रहे हैं, नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के प्रमोट करने में आपका हिस्सा होगा, जिस मस्जिद से शिर्क फैलेगा, जिस मस्जिद से बेदीनी फैलेगी, चले फिकी इख्तलाफात को पीछे कर दें, उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ गुंजाइश बनती है, लेकिन जहाँ अकायद ख़राब हो रहे हों, जहाँ सुन्नत की बजाय बेदत और तौहीद की बजाय शिर्क फैले, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपका पैसा वहाँ लगे? क्या हम में से कोई चाहता है कि कोई किसी चर्च को एक पैनी भी दें? मुझे किसी ने कल परसों भी बताया शायद कि किसी ने कोशिश की किसी जगह किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में कि किसी मुसलमान मुल्क से पैसा आए और यहाँ मस्जिद बन जाए, तो गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। और दलील क्या गवर्नमेंट की कि क्या वो मुल्क हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम अपने पैसे से वहाँ चर्च कायम करें, तो फिर हम भी नहीं इजाज़त देते कि आप यहाँ मस्जिद कायम करें। कुफर और इस्लाम में तो इतनी सख्त असर लगी हो और मुसलमान सिर्फ इस नाम पर कोई हरज नहीं, कुछ नहीं होता, दिस एंड दैट का ला तकुम फीहि अबदा, आप कभी दाखिल भी ना होना, तुम्हारी तो सोच अभी नहीं ठीक हुई, अभी तो तुम्हारे अपने अकीदे में झोल है। अब ये को नहीं चलो जुम्मा पढ़ने, चलो किसी शबरात मनाने, किसी हलवा खाने, किसी कुछ करने जाएंगे, तुम अभी बीमार हो, अभी तुम्हें खुद नहीं पता, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते, मुंह पे मास्क नहीं लगा लेते, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं जानते, मत सुनो ऐसी बातें जिससे तुम्हारी अपनी सोच जो है वो ख़राब हो। ला मस्जिद उस्सिसाल तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फी, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई तकवा पर पहले ही दिन से, वो ज़्यादा हकदार है, वो ज़्यादा लायक है इसके कि आप वहाँ दाखिल हों, आप वहाँ रहें, यानी मस्जिद मौजूद है। अब ये कौन सी मस्जिद है? बास कहते हैं कि ये मस्जिद कुबा है, क्योंकि ये मस्जिद ज़रार उसके बिल्कुल करीब थी, और दूसरी बात है कि मस्जिद कुबा जो है पहली मस्जिद है इस्लाम में, उसके बाद मस्जिद नबी बनी। बास कहते हैं इससे मुराद मस्जिद नबी है, क्योंकि दोनों की बुनियाद तकवा पर रखी गई, और दोनों को जमा कर लें तो दोनों ही बातें ठीक हैं। यहाँ कोई एक मस्जिद का नाम लेना मुराद नहीं था, बल्कि ये मुराद था इससे कि वो मस्जिद जिसको तकवा पे रखा, वो मस्जिद जिसमें जाने आने वालों ने खुद अपने खून पसीने से उसको सींचा, अल्लाह के नबी ने खुद पत्थर उठा के उन जगहों को तामीर करने की कोशिश की। जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे तो आपने 3 दिन कुबा के मुकाम पर क़याम किया था और वहाँ आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी थी। ये अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमान मुल्कों में से पहली मस्जिद बनी थी जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बनवाई, और जब ये बन गई तो उसके बाद फिर वहाँ पे जुमा भी हुआ था। 3 दिन के बाद जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपको पता ही होगा मशहूर वाक़या कि आपने खुद अपनी जगह चूज़ करने से पहले कि मैं कहाँ रहूँगा, किसके घर रहूँगा, आपने मस्जिद नबी की जगह चूज़ की। जब आपकी कुस्वा चलते चलते एक जगह रुकी, फिर बैठी, फिर बैठ के उठ के आगे चल पड़ी, फिर आगे गई तो अबू अय्यूब अंसारी के घर से गुजर गई, फिर पलट के दोबारा उधर बैठी, तो जो पहली जगह जहाँ बैठ के उठी थी आपने कहा ये जगह अल्लाह का घर बनेगा, मस्जिद बनेगी, किसकी है? 2 यतीम बच्चों की थी। आपने कहा कि हमें इसकी जगह मस्जिद के लिए चाहिए, उन्होंने कहा ऐसे ही ले ले, कहा नहीं पैसे दे के लूँगा, बोलो क्या देते हो? वो जगह ली और ख़ुद आपने अपने साथियों के साथ वहाँ छप्पर डाला, और छोटी सी थी ये तो आज बनी हुई है इतनी खूबसूरत, पहले दिन नहीं मिलती इतनी बड़ी बड़ी जगह, क्या हम डिज़र्व करते हैं? प्रूव करना पड़ता। अल्लाह के नबी आपके साथियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मस्जिद नबी की छतें यूं छतरियों की तरह खुल जाएंगी, वहाँ इतने बल्ब लगे होंगे, वहाँ इतनी आरामदेह कुर्सियाँ होंगी, वहाँ इतना प्यारा कारपेट होगा, इतनी वसत हो जाएगी। पूरा मदीना उस वक़्त इस मस्जिद जो इस वक्त मौजूदा मस्जिद है इससे बहुत छोटा था, गिनती के लोग थे, पहले दिन ऐसे नहीं हो जाती चीजें, काम किए, तकवा पे बने, मेहनत की, उसको संभाला, उसकी अच्छी टेक केयर की, अल्लाह ने उसे बड़ी कर दी, हर दौर में उसकी एक्सटेंशन होती रही, और आज देखे तो पूरा शहर बसा हुआ। तो अल्लाह के नबी के हाथ से ये काम हुए, इसलिए कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ नमाज पढ़ें जहाँ अल्लाह का खौफ मिले, जहाँ से लोगों को दुनिया में आने का मकसद पता चले, जहाँ से बच्चों को पता चले कि माँ बाप के हकूक़ क्या हैं और माँ बाप को अपनी जिम्मेदारियों का पता चले। क्योंकि मस्जिदों की बुनियादें ज़मीनों पर नहीं होती, मस्जिदों की बुनियादें दिल के तकवों पर खड़ी होती हैं। जिन दिलों में तकवा नहीं होता वहाँ मस्जिद भी मस्जिद नहीं रहती। तो लिहाजा आप जाकर वहाँ पे नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी जगह दी हुई है, आपने ये झगड़े वाली और ऐसी इख्तलाफी जगह पे जाके करना भी क्या है, क्या है उसकी और खूबियाँ। फरमाया फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, इसमें ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह पसंद करता है पाक रहने वालों को। बस कहते हैं कि इसमें अहले कुबा की तारीफ की गई है। नबी सल्लम से जब ये बात पूछी गई तो आपने फरमाया कि कुबा के रहने वाले लोग तहारत दो तरह से करते हैं, एक तो मिट्टी के ढेलों से इस्तंजा करते हैं जैसे कि उस दौर का रिवाज था, लेकिन इनमें ये खूबी है कि ये बाद में पानी भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इतना प्राइवेट मैटर, लेकिन सफाई की वजह से कुरान पाक में उसकी तारीफ कर दी गई कि पानी का इस्तेमाल करना जो है वो इतना पसंदीदा अमल है कि अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा कर दिया। और इसे ये भी पता चलता है कि इस्लाम सफाई को पसंद करता है। तहारत दो तरह की होती है, पीछे हम किताबो तहारा में बड़ी तफसील से पढ़ चुके। एक तो ज़ाहरी तहारत होती है, गंदगी ना हो, वहाँ खाना ना गिरा हो, वहाँ जाते ही पहले स्मेल ना आए, वहाँ चीज़ें इस तरह ना बिखरी हों कैसे लगे कि कोई किसी कबाड़िए की दुकान है और जो किसी की चीज़ बच खुच गई वो वहाँ आ जाए। मस्जिदें आम तौर पे भी साफ़ होनी चाहिए, और मस्जिद से मुराद पे यहाँ सारी चीज़ें आप लेंगे कि जो भी अल्लाह के रास्ते की होती हैं, दीनी इदारे कह लीजिए या दूसरे कर लें। हम सब ज़रा अपने हालात को भी चेक कर लें कि आज मुसलमानों के दीनी इदारे कैसे होते हैं। टांग टूटी हुई कुर्सी वहाँ मौजूद है तो किसी के बचे खुचे कपड़े रखे हुए हैंगर्स में, वो जो जिसका बच गया छोड़ के चले गए, रख के चले गए, ये कौन सी सफाई और ये कौन सा मामला है। याद रखें कि हमारे अपने घर साफ हो ना हो ये हमारा अपना मामला है, कोई जाए ना जाए हमारे घर में, वक्त मिलेगा तो कर लेंगे, गंदगी ना हो, लेकिन अल्लाह के घर साफ होने चाहिए। लेकिन अब बात जब कहानी उलट हो जाए, अपने घरों के मामले में तो हम इतने संजीदा हों कि कई कई सौ रुपये लेके हम सफाई करवाने वालों को बुलाएं और वो एक एक बटन को साफ़ करके जाएं, एक एक कुर्सी को उठा के साफ़ करें, लेकिन अल्लाह की जगह हमारी गंदी हो तो लोग ऐसे दीन को पसंद नहीं करते। कभी आप किसी चर्च में से जाके देखें, गुजरे करीब से देखें, इतने साफ, ऐसे खुशबू आती है उनके, वो अंदर गंदगी है, कुत्ते बिल्लियाँ आए पता नहीं, लेकिन बाहर ज़ाहरी नजासत नहीं होती, इतनी सफाई है। और इसके बरक्स हम मुसलमानों का काम, बाहर के मुल्कों में तो अल्लाह का शुक्र है कि शायद वो भी पास ना हो जगह अगर गंदी हो, लेकिन हम अपने मुल्कों में कैसा मामला पेश करते हैं। सफ़र में जब होते हैं हम लोग तो इतनी जल्दी पता चलता है, एयरपोर्ट से पता चल जाता है कि अब हम किसी मुसलमान मुल्क में आ गए। यकीन करें, दौलतमंद और गरीब मुल्क की बात नहीं कर रही मैं। आप सोचें कि हमारा मुल्क गरीब है, हमारे पास टॉयलेट पेपर्स नहीं है, हमारे पास अच्छा क्लीनिंग स्टफ नहीं है। मैंने लिटरली अमीर गरीब दोनों मुल्कों का फ़र्क देखा है। कुछ तो बहुत साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात तो इतने गंदे में, एक बड़े अरमानों के साथ किसी एक मुल्क में हम गए थे, लेकिन जब हम वहाँ एयरपोर्ट से निकले और जो हमें उससे आगे किसी शहर में जाना था, वो ट्रेन लेनी थी, जहाँ हमारा पढ़ने का था वो वहाँ से 2-3 घंटे दूर था, तो जब हम ट्रेन में आने लगे, पहले प्लेन में थे फिर ट्रेन में जाना था, तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट यूज़ करना है। यकीन करें आप सोच नहीं सकते, आज भी जब मुझे याद आता है तो मुझे उबकाइयाँ आने लगती हैं। इतना गंदा ट्रेन का बाथरूम था, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन में नहीं, और उसके भी पैसे लिए उन्होंने, और वो जाने को दिल ना चाहे इंसान का, इतनी गंदी और इतनी फिसलन और इतना कुछ, और क्या है, और वहाँ बाहर सारे टूरिस्ट थे, वो मुल्क है ही सिर्फ आज के दौर में टूरिस्ट की नज़र हुआ हुआ। तो लिहाजा सफाई बाहर कब दिखती है, जब अंदर होती है। हम जाहिर से जो दिख रहे होते हैं ना वो असल में अंदर की तस्वीर है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात को साबित करा और साथ ही कह दिया कि अल्लाह पसंद करता है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह उनको पसंद करे, तो क्या फिर अल्लाह गंदे मंदे लोगों को पसंद करेगा? कैसे लोगों को पसंद करेगा जिससे स्मेल आए, साथ बैठा भी किया, हाय आज किसके साथ मेरी बारी आ गई, आज किसके पास मैं आ गया, कोई अल्लाह करे कि मैं मेरे साथ वाली कुर्सी तो खाली रहे, हम भी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले देखा करें, मुमकिन हो तो सुबह शावर लेके आए, ब्रश करें, कंघी करें, हस्ब तौफीक साफ कपड़े पहने, स्काफ अपना रोज धोएं, यूनिफॉर्म को साफ रखें। इतनी हल्का फुल्का साफ कोई इतर लगा सकते हैं कि जिससे सिर्फ आपको या आपके साथ बैठी आपकी जो साथी उससे खुशबू आए। आप ब्रेक के लिए जब यहाँ से उठते हैं 2-2.5 घंटे बैठने के बाद, पहले कुल्ली किया करें, फिर बात करें दूसरों से। बस दफ़ा जब हमारे साथ ये मामलात होते हैं कि जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए असीयत का सबक बनते हैं, तो बहरहाल अब सफाई पे तो यहाँ बात करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसका एहसास ज़रूर रखें। बड़ी रहमत उतरती है अल्लाह की, आपका घर साफ़ होता है, आपका दिल चाहता है खुद ही काम करें, ऐसे दिल सुकून में आता है। किचन साफ़ होता है, उस किचन में पकाने का इतना मज़ा आता है, और जहाँ चीज़ें बिखरी हुई, चीज़ें लुढ़क रही पुढ़क रही, तो वो चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं होती। फिर आगे अल्लाह ताला उसी बात को बढ़ाते हैं, आफा मन अस्सस बुनयानहु अला तक्वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन अम मन अस्सस बुनयानहु अला शफा जुरुफिन हारिन हारिन फनहार बिही फी नारि जहन्नम। मुश्किल आयत है तर्जमे के अतबार से, बड़ी मुश्किल आयत है, सच्ची बता रही हूँ, ये तर्जमे के अतबार से जब आप इसके एक एक लफ्ज़ को समझेंगे तो यही चीज़ आपके लिए आसान होगी। अल्लाह ताला कहता है, क्या पस भला जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की तकवा पर, अल्लाह के यानी अल्लाह के डर और उसकी रजामंदी पर, बेहतर है अम या मन वो अस्स बुनियान हुआ। उसकी पहला शर्त जो है ना, वो अल्लाह के नबी है, मन पहला अल्लाह के नबी के लिए, और बुनियान हु से मुराद अपनी इमारत यानी कुबा और मस्जिद नबी, तकवा मिन अल्लाह व रिदवान वाज़े है, ये बेहतर है, यानी मस्जिद कुबा और मस्जिद नबी बेहतर है, या अम मन अस्स बुनियान हु अला शफा, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी। अस्स का लफ्ज़ तासीस असास इसी से ही है, जैसे हम कहते हैं ना यौम तासीस, वो दिन जिस दिन किसी इमारत की बुनियाद रखी जाती है उसको बोलते हैं, किसी चीज़ की बुनियाद रखना। इशारा है इधर अबू आमिर फासिक की तरफ कि जिसने एक ऐसी मस्जिद की बुनियाद रखी, अला शफा जुरुफिन, अला शिफा जो किनारे पर है, शिफा कहते हैं किनारे को, शफुन शीन फा हमजा, ये जो हमारे होंठ है ना इनको शफा तईन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अब 30वें पारे में, कह अलम नज अल लहू आइनैन व लिसानम व शफा तईन व हदई ना हन नज दैन, सूरह बलद की आयते हैं ये। तो शफातैन होंठों को, क्योंकि किनारे भी होंठ भी जो होते हैं वो भी किनारे ही होते हैं, और जुरुफ कहते हैं खाई को, खड्डा जैसे डिच होती है, नाले का पानी जब मट्टी बहाकर ले जाए तो जो खोखली जगह बन जाती है उसको जुरुफ कहते हैं, खाई हुई जगह, खाई ये जो कहते हैं ना खाइयाँ, वो भला खाइयाँ क्यों होती हैं, आज ये भी देख लें, उसके अंदर से मट्टी खाली होती है, खोखली, खाई खोखली जो भी काम कह दें वही मतलब है इसमें। इसी तरह जुरुफ कहते हैं ऐसा कुआं, लम तुब न बिल हिजारा, जिसके किनारे ना हो, कच्चा कुआं आप कह लें इसको, इसके किनारों के गिरने का ज़्यादा डर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ एक लफ्ज़ आता है दरिया का कटाव, कहीं से सैलाब का पानी गुजर जाए तो कई जगह से ज़मीन कट कट जाती है, तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। तो कहा कि एक ऐसी मस्जिद जो है ही खोखली, मैं इसको जब सोचती हूँ तो मेरे ज़हन में एक तस्वीर भी आती है जो मेरे पास कहीं है भी इंटरनेट पे, यानी आप इमेजिन करें कि आप समंदर के किनारे पे खड़े हैं और उस पे कोई पहाड़ है, और पहाड़ इतना आगे चला जा चुका है लेकिन नीचे लहरों की वजह से नीचे की हिस्सा बिल्कुल खाया जा चुका है। कोई आपने देखी ऐसी चीज़? बहुत जगह होता है समंदरों के किनारों पर कि नीचे पानी की लहरों के टकराने से पहाड़ घुल चुका होता है लेकिन ऊपर एक हल्का सा छज्जा सा बन चुका होता है। इमेजिन करें जरा आप वहाँ उस बिल्कुल छज्जे के ऊपर एक बिल्डिंग बनाए, क्या हाल होगा, ऐसे ही लगेगा कि अभी नीचे गिर जाएंगे। अल्लाह कहते हैं कि वो काम जो अल्लाह के तकवे, अल्लाह ताला के तकवे के बग़ैर हो, अल्लाह का खौफ ना हो या अल्लाह की रज़ा की तलब ना हो, वो तो एक ऐसे किनारे पे भी बिल्डिंग खड़ी करनी है कि जो बिल्कुल खाई के घड़े पे है, फनहार अभी ही फी नारी जहन्नम, कि वो वहाँ से जाके गिर पड़ेगी, समंदर में नहीं जहन्नम की आग में गिरेगी। बेसलेस कामों की ये अल्लाह की नज़र में हैसियत है। नाम लोग नहीं देखेंगे हमारे, लोग हमारी बिल्डिंग नहीं देखेंगे, लोग देख लें अल्लाह नहीं देखेगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह नहीं दिखाता रहा ज़ालिम कौम को कि जो ऐसे काम करके अपने आप को बहुत नेक समझे لیکن اللہ کی نظر میں چیزوں کی قدر اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن تین لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں ایک شہید ہوگا۔ وہ صرف اس لیے شہید ہوا کہ لوگ میرا نام لیں، ایک قاری قرآن ہوگا جو اس لیے پڑھتا رہا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، اور ایک ایسا سخی ہوگا کہ جو اپنا مال اس لیے لگائے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت کا یہ خلاصہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی کام کریں، چھوٹا کریں کہ بڑا کریں، کوئی نہیں یہ آپ کو کل کہے گا، تانا نہیں دے گا کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمارت کیوں بنائی، کوئی آپ کو یہ تانا نہیں دے گا کہ اتنے تھوڑے لوگوں کو آپ نے کیوں سکھایا۔ لیکن یہ بات آپ کے لیے بہت بڑی حجت بن جائے گی کہ آپ کے کام کے کرنے میں نیت کیا تھی۔ اللہ نے ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں ان کا حال کیا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ بلڈنگ جو انہوں نے بنا لی ان کے دل کے شک کا سبب، کلک پڑا رہے گا، غلط کام کرنے والے کے دل میں اضطراب رہتا ہے، ان کی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دل کے شک کا سبب بنے گی۔ اور ریبا یا ریب اس شک کو کہتے ہیں جو اضطراب پیدا کرے، بے چینی، نیکی کا کام کر کے بھی خوش نہیں ہے، پھر بے چین ہے، پھر غم لگا ہوا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ نہ کوئی کر دے وہ نہ کر دے، اس طرح کی باتیں نہ کر دے۔ یعنی نیکی کے کام کرنے والے کے چہرے پہ تو خوشی اطمینان ہے، وہ زیادہ کرے یا تھوڑا یہ بڑی بات نہیں، لیکن جب نیکی کا کام کر کے بھی بندہ بے چین رہے، پریشان ہو، تو سمجھ لے کہ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ 10 پارے آپ کر چکے، کیا آپ کے دل کو اطمینان ملا؟ اب یہ ٹیسٹوں کا غم اور ہے، سبق یاد کرنا اور ہے، لیکن کیا اندر ایک گہرا سکون نہیں ہے؟ میں کہتی ہوں صرف اللہ، یہ دل کا سکون اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ، الحمدللہ کسی قسم کا خوف نہیں دل میں، کسی کا کوئی، کسی کی ناراضگی کا نہیں، کسی کی خوشی کا نہیں، نہ کسی کی محبت، نہ کسی کا غم۔ اب دیکھیے کہ سچا ایمان جو ہوتا ہے نا، اور سچا ایمان والا، اس کے پاس مشکلات آتی ہیں، ٹھہرتی نہیں ہے، اس کے پاس بڑے بڑے پہاڑ جیسے مسئلے ہوں گے، ایسے لگے گا کہ اب یہ سارے مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، خندق جیسے مار کے آئیں گے، لیکن وہ 10 دن کے، 15 دن، 1 مہینے کے حصار کے بعد پھر مسکراہٹیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کس کی زندگی میں محاذ آئے تھے، کتنوں نے آپ کو دھوکے دیے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ مطمئن رہے۔ سچا ایمان شک سے بالا تر کر دیتا ہے بندے کو، لیکن جن کے دلوں میں خلق ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، الا ان تقطع قلوبهم، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، یعنی موت تک ان کا شک باقی رہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ایک ساتھی کی بات یاد آ جاتی ہے، معروف تھی شہر میں درس و تدریس کے لیے، لیکن ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھی تو کہنے لگی سکون نہیں ہے دل کو، پتہ نہیں آج کے دور میں اتنی بے سکونی کیوں ہے، خوشی نہیں۔ میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میرا دل اس وقت کہہ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں آپ کو دین کی بات بتا رہی ہوں، میں کب بے چین ہوں گی؟ میں نے آپ کو ایسی بات بتا دی جو میرے اپنے اندر نہیں آئے گا، میرے دل میں کلک کے نہیں آنا چاہیے۔ پھر بعد میں وہی کام جب گھر جا کے کر رہی ہوں گی جس سے آپ کو روکا، تو کیا مجھے اس وقت بے چینی ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ ہر بندہ تو خود اپنے اوپر خود محافظ ہے، ہر بندے دوسروں پہ جتنے مرضی پردے ڈال لو، آپ کا تو اپنا آپ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہے۔ وہ سورت قیامہ کی آیتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، جو زبان پہ بھی نہیں آ رہی، کہ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معذیرہ، انسان تو اپنے نفس کو خود دیکھنے والا ہے، چاہے دوسروں کے سامنے کتنے عذر پیش کر دے۔ تو یہ قلق اور شک کب دور ہوتا ہے؟ نمبر ایک، کال اور فیل میں تضاد نہ ہو، دوسری بات، جو بات کہے پورے یقین اور دلیل کی بنیاد پہ کہے۔ اگر میں آپ کو غلط بات بتا رہی ہوں گی نا، تو ہر لمحے مجھے شک ہوگا، ہائے کوئی ایسا بندہ نہ میری بات سن لے جس کو صحیح مسئلہ پتہ ہے، کوئی علم والا نہ اس محفل میں آ کے بیٹھ جائے، کوئی مولوی، کوئی دیندار، کوئی عالمہ آ کے نہ بیٹھ جائیں، وہ تو فوراً کہہ دیں گے ارے یہ تو ان کو بہکا رہی ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی علامتیں ہوتی ہیں بندے کی ان چیزوں پہ کہ جس کے اوپر اس کے دل میں کھلک آتا ہے۔ پھر تیسری بات ہے کہ جو بات انسان کہے ہر ممکن حد تک اس پہ عمل کی کوشش کرے۔ ہر بندہ فرشتہ نہیں ہوتا، دین کا کام کرنے بتانے مسجدیں چلانے والے بھی فرشتے نہیں ہوتے، इमाम भी इंसान होते हैं, मौज़िन भी इंसान होते हैं, लेकिन हत्तल वसा इंसान कोशिश करे कि जो काम भी कहने लगा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात ऐसी हो कि जो सच के साथ हो, तो अल्लाह ताला फिर सुकून देगा। अपने लिए एक मोटा सा क्राइटेरियन लिख लें, नेक काम करके भी अगर सुकून ना मिले तो समझ लें कि नीयत में फतूर है। आप दीन का काम करें या आप दीन के काम में मददगार बने, आप पढ़ें या पढ़ाएं, दोनों सूरतों में यहाँ से उठते हुए अपने दिलों को पूछा करें कि आज जो बात सुनी है ठीक थी। एक अलग बात है, बंदे को अपनी खामियां पता चलती हैं, आईना देख के हम परेशान हो जाते हैं कि इतने दाग हैं, धब्बे हैं, वो और होता है, वो रैब नहीं होता, वो और इस्तराब होता है, शक होता है, वो किसी और तरह की उलझन होती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें दीन के नाम पर रुसवा ना करे। देखिए, दुनिया के नाम में तो सारी ज़िंदगी के बहके हुए लोग होते हैं जो कुरान की महफिलों में आके पनाह पाते हैं, कहीं दुख खाए हुए, कोई चोटें खाए हुए, कोई इधर उधर से धक्के खाए हुए। लेकिन अगर दीन की महफिल में एक इंसान को सुकून ना मिले, यहाँ चैन ना मिले, तो फिर कहाँ जाएंगे। ये वो चीज़ है कि जिसको समझ आ गई, इंशाल्लाह उसका दिल और जमने लगता है, और जिसको नहीं समझ आती, कहीं भी कोई काम करे, खुद को सोचे क्या कर रहा हूँ, किसकी मदद कर रहा हूँ। बस लोग शैतान धोखा डाल देते हैं, तुम सही लोगों की मदद नहीं कर रहे, तुम गलत लोगों के हत्थे लग गए, मत करें लोगों की बात, अकेले बैठ जाएं, दो नफिल पढ़ें, सिलाते इस्तखारा करें। अल्लाह तू बता, जिस दीन के काम का साथ दे रही हूँ ठीक दे रही हूँ, जो दिल कहेगा अल्लाह ताला आपके लिए उसमें खैर डाल देगा। अब यहाँ पे तिलावत सुन के इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे।
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم।
इनका सवाल है कि चूंकि हमने इसमें ये पढ़ा कि जहाँ शिर्क फैले जिन मस्जिदों में, वहाँ नहीं देना चाहिए, तो जब हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ हमें नहीं पता होता और फिर हम दे देते हैं, या पता, दो सूरतें हैं। देखिए आपका सवाल, अगर आप इसको मैं मुख्तसर कर दूँ कि ऐसी जगह जहाँ से हमें यकीन है कि शिर्क फैल रहा है और पहले बेइल्मी थी या बेइल्म के साथ आगे, अवॉइड करें, किसी को कुछ ना कहें, दूसरों को मत मना करें, आप रुक सकते हैं, अपना ना करें काम। बाकी रहेगी बात, आप कहीं राह चलते नमाज़ पढ़ते हैं किसी मस्जिद में, आपका दिल चाहता है डोनेशन बॉक्स में कुछ डाल दें, आपको बाहर मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि जिससे लगे कि ये गैर इस्लामी का, डाल दें जो आपका दिल चाहे, लेकिन जहां आपको पता है वहां आप ना करें। आपका सवाल है, उसकी जवाब में ये है कि आपको पता चल गया कि किसी जगह अगर शिर्क है तो आप ना दें, बात सीधी सी, कोई अब कह रहे नहीं दे दें तो उसको कहने दें क्योंकि उसने ये बात नहीं सुनी। और जो बातें भी आप यहाँ सुनते हैं ना, इसको पहले अपनी ज़ात तक रखें, अपने ऊपर लें, आप ना किसी का हिस्सा ऐसा बन जाए और बाकी आप बड़े से बड़े किसी को भी पूछें, कोई भी जो बात कर रहा हो तो उसको गलत नहीं कहता। बाकी आप कह रही हैं कि जी नमाज ही पढ़ी जाती है, वो तो हर जगह पढ़ी जाती है, पढ़े नमाज, कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए कि अब आपने जो बात, जो नाम आपने लिया, मैं नहीं लेना चाहती, इसलिए कि हम लोगों की का असूल ही है कि हम किसी मसलक का नाम ले के उसकी बात नहीं करते। लेकिन जो आपने कहा है कि ज़ाहिर है कि उसके बारे में तो इत्तफाकियत और मुत्तफिक बात है कि मुसलमानों उनके अकायद इस्लाम से तो हटे हुए हैं। अब आप कहते हैं कि लोग इसलिए देते हैं कि वहाँ बच्चे जाके कुरान ही पढ़ते हैं, जो जिसका दिल करे वो दे दे, कुरान पढ़ने के दे दें, लेकिन देखे के तावन अलल बिर्री व तक्वा वला तावन अलल इस्मी वल उदवान। हाँ, इनका सवाल है कि अगर कोई ऐसी मस्जिद है जहाँ शिर्क भी है लेकिन वो जलसले वालों के लिए पैसे जमा करें दे दे, अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि वो देंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं, आप ज़रूर दें उनको। जी देखिए कि पहली बात है कि हम तो किसी के लिए कोई फतवा नहीं देंगे, अल्लाह के नबी के सामने तो कुरान की आयतें दलील थी ना कि ला तकुम फीही अबदा। ठीक है, हमारा गुमान किसी के बारे में बुरा नहीं होना चाहिए इल्ला ये कि वो खुद जाहिर हो जाए इस बात में। तो बाकी अब आप इस आयत से ये सोच रहे हैं कि वहाँ चूँकि अल्लाह के नबी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं थी, और आपका सवाल कि फिर हम बिल्कुल वहाँ ऐसी जगहों में कभी गुजरे ना जाए ना, तो ये मतलब नहीं है। मुराद ये है कि आप उनको उनको कायम रखने में मददगार ना बने, वरना तो आप अगर इबरत के लिए किसी और जगहों में नहीं जाते, चर्चों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो खुदा ना ऐसा ये नहीं मतलब कि वहाँ से गुजरना भी आपका गुनाह हो गया, मुराद ये कि उनका सपोर्ट ना करें। क्योंकि आप देखिए नबी का वहाँ खड़ा होना एक बहुत बड़ा सपोर्टिव फैक्टर था ना, कि उसके बाद वो लीगलाइज हो जाती। लोग कहते हैं ये भी वहाँ जाते आते रहते हैं, ये जुमला ना कभी आपके नाम से आए लोगों को कि ये भी वहाँ आते जाते रहते हैं, तो ये ठीक ही होगी। जब लोग हमारे नाम से कोई दीन जान रहे होते हैं ना, तो मैं कहते हैं ये वहाँ जाते हैं ये ठीक ही होगा ना। तो हर बंदे के एक लेवल होते हैं, आम लोग जाते हैं किसी को इतना नहीं लगता, दूसरा जाता है तो दूसरों की नज़रों में आता है, तो ये सारे फैक्टर होंगे, इसलिए भी इस पर इतने परेशान ना हों।